सवाल यह है कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि किसी पर काला जादू है, किसी से मालूम करना सही है। अगर कोई मोतबर शख्स है, दीनदार शख्स है, उससे मालूम करें तो हाँ ठीक है, मालूम कर सकते हैं। और कभी ऐसा होता है कि बाज़ सूरह बकरा वगैरह जब उसके पास पढ़ी जाती है तो अगर असरात होते हैं तो पता चलता है कि नहीं ठीक है, उसको तकलीफ़ हो रही है या कुछ हो रहा है। लेकिन अगर कोई इस फ़न को जानता हो उससे मालूम कर लिया जाए, बाज़ लोग होते हैं जो इस फ़न को जानते हैं तो उनसे मालूम कर लिया जाए, लेकिन इसमें सही गलत बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो इंसान किसी गैर मोतबर शख्स के पीछे ना पड़ जाए। सूरह बकरा की तिलावत होती रहे, और पूरी सूरत ना हो सके तो कम अज़ कम सूरह बकरा की आखिरी आयात आयतुल कुर्सी और मुआवज़तैन, सूरह फातिहा, सूरह बकरा की आयतुल कुर्सी और आखिरी दो आयतें और सूरह फलक और सूरह नास, ये पढ़कर इंसान ये पढ़ने का अहतमाम करे कम अज़ कम दिन में 3 मरतबा, सुबह और मगरिब के वक्त, रात होते ही और सोने से पहले, 3 अवकात में इनका अहतमाम करें। इंशाल्लाह अगर कोई असर होगा भी तो ख़त्म हो जाएगा। पढ़कर उनके ऊपर दम करें, ख़ुद अपने आप पर दम कर लें, खुद पढ़ें सबसे अच्छा है। ख़ुद न कर सकें कोई और पढ़कर दम कर दें, और पानी पर दम करें और वो पानी पीते रहें तो इंशाल्लाह असरात होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। सौदा को इस तरह लिखेंगे, हाँ जैसे लिखा हुआ है, ये सौदा अलग है, ये सौदा अलग है, सौदा अलग चीज़ है। सौदा, सौदा वो है जो दूसरा किसी ने लिखा हुआ है, सीन वाव दाल और हा की तरह कह रहे, लेकिन ये असल ता होना चाहिए दो नुक्ते के साथ, ये सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अगर किसी ने कोई बात अपनी आँखों से देखी और किसी को बताए तो ये दूसरा शख्स किसी तीसरे को बता सकता है, क्या ये सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ाना है? अगर बुराई है तो आगे बढ़ाना जायज़ नहीं है, अगर किसी की खूबी है तो आगे बढ़ा सकते हैं, देखी हुई चीज़ है, और ये कह सकते हैं कि फ़लाने ने देखी है और उसकी देखी हुई चीज़ है तो देखी हुई चीज़ है। सुनी सुनाई, हाँ मैं कह दूँ कि हाँ फ़लाने, मैंने सुना है कि फ़लाने ने ऐसा किया है, अब मैंने भी सुनी हुई बात किसी को बता दी, वो सुनी हुई बात आगे बता दे तो सुनी सुनी बातें, हालांकि उसका कोई एतबार नहीं। अगर पता है कि वो बात सही है और किसी की खूबी और अच्छाई है तो हाँ आगे बता सकते हैं, बुराई है तो जायज़ नहीं बताना। अच्छा सवाल है, किसी हिंदू की तरफ से बेटी को एक गुड़िया तोहफे में मिली, कुछ अरसे बाद घर वालों में बीमारियों का एक सिलसिला शुरू हुआ, इस गुड़िया को हिजाब भी सिलवा कर पहनाया गया है, ख़्याल आ रहा है कि इस गुड़िया को फेंक दें, कहीं जादू वगैरह ना करवाया गया हो, क्या इस गुड़िया का हिजाब उतार कर देखा जाए? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था और किसी कुएं में गुड़िया मिली थी। गुड़िया मिलने का जिक्र तो नहीं मिलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, बल्कि बाल थे, बालों में गिरा लगा कर आप पर सहर किया गया था। हाँ ये भी तरीक़ा जो किसी ने लिखा है एहतमाल तो है, ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, मुमकिन है। उसको खोलने के बजाय खोल कर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शुबा हो रहा है तो खामोखा शुबे में क्यों पड़ें, उसको किसी जगह आग में जला दें, ख़त्म हो जाएगी, आग में जला दें और उसकी राख को दफन कर दें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अगर शुबा हो रहा है, वरना ये भी ना यकीन भी ना करें कि वाकई ऐसा होगा, हो सकता है कि हो, एहतमाल है, शुबा है तो शुबे को ख़त्म कर दें, जला दें और राख को दफन कर दें, बस किस्सा ख़त्म हो गया। हरमैन में नमाज पढ़ने को जो सवाब है उसको हासिल करने का क्या ख्वातीन को भी दोनों मसाजिद में अंदर पहुंचने की कोशिश करना चाहिए? असल के लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजीलत बयान फरमाई है वो मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है, उसूली एतबार से, इसलिए कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में रहते हुए अपने दौर में खुद इमामत फरमा रहे थे, उस ज़माने की बात है कि आपने फरमाया औरत के लिए घर में नमाज़ पढ़ना बेहतर है, इसका मतलब है कि फजीलत मस्जिद में पढ़ने की जो है वो औरतों के लिए नहीं मर्दों के लिए है। औरत कैसे वो फजीलत हासिल करे? मक्का मुकर्रमा के तो मामला बड़ा आसान है, इसलिए कि मक्का मुकर्रमा के बारे में बहुत से उलमा की राय यह है कि मक्का मुकर्रमा में जो फजीलत है वो सिर्फ मस्जिद हराम की नहीं, पूरे हुदूद हरम की है, پورے حدود حرم کی ہے، تو وہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے مدینہ منورہ میں. اور بہرحال مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر بھی ان ملکوں میں مسجد کی جماعت کی فضیلت عورت کیسے حاصل کرے؟ عورت دو کام کرے. نمبر ایک، جو نماز کے اوقات فکس کیے ہیں، مقرر کیے ہیں، اوقات مقررہ میں نماز پڑھے، جیسے مرد اوقات مقررہ میں نماز پڑھتے ہیں، عورت بھی اوقات مقررہ میں نماز پڑھے. نمبر دو، جگہ بھی مقرر کرے کہ اچھا اس جگہ میں نماز پڑھنی ہے، تاکہ وہ اہتمام کرے، جیسے مرد مسجد جا کر نماز پڑھتے ہیں، یہ عورت بھی اس جگہ میں جا کر نماز پڑھے. دو باتیں ہو گئیں، بلکہ تیسری بات، تین باتیں. تیسری چیز، گھر میں جو مرد ہیں کوشش کریں کسی طریقے سے کہ وہ مسجد جا کر نماز پڑھیں، اس کوشش میں ان کو بھی مسجد کے ثواب کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو مسجد کے جانے کی جو فضیلت ہے، بھیجنے کی فضیلت میں وہ گویا کہ یہ شامل ہو جائیں گی. تین کام عورتوں کو کرنے ہیں جس سے وہ فضیلت میں داخل ہو سکتی ہیں. مرد ہوں ان کو بھیجیں، اور نماز کے وقت مقرر ہو اس وقت مقرر نہیں، چلو ٹھیک ہے شروع وقت میں پڑھ لیا، ابھی آسانی ہے آخر میں پڑھ لیں گے، نہیں، اوقات مقرر، جگہ مقرر، اور جو گھر میں مرد ہوں ان کو بھیجنے کی کوشش. کبھی ہوتا ہے رکاوٹ کی کوشش ہوتی ہے، نہیں نہ جائیں، نہیں، بھیجنے کی کوشش کی جائے. سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری آیات سورہ بقرہ کی فلق الناس دن میں تین مرتبہ. ہاں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول سے آخر تک، سورہ فلق اور ناس. جادو توڑ کے لیے ہم کیا عمل کریں خود سے؟ جادو توڑنے کا عمل، یہ تو ایک لڑائی والا کام ہے کہ کس نے کیا ہے اس کے ساتھ اس کو، یعنی ایک مستقل ایک فن ہے جو انسان سیکھتا ہے، اور میں اس فن سے واقف نہیں ہوں، لیکن بہرحال یہ آیتیں جو ہیں یہ کافی ہیں انشاءاللہ حفاظت کے لیے، اور جادو کے جو اثرات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ چیزیں کافی ہیں. اور ایسی کوئی تعویذ، اس طرح کی کوئی چیز مل جائے انسان اپنا، اس لیے کہ ظاہر ہے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت رکھی ہے، انسان یہ آیتیں پڑھ لے، جو کچھ ہے وہ جلا کر دفن کر دے، انشاءاللہ قصہ ختم ہو جائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جمعرات کو انشاءاللہ پھر جمع ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.